संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर के अनुसार प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, किंतु वो अपने को जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, इसलिए अनंत दुखी हो रहा है। यह बात कल रिश्ते वाले के दृष्टांत से समझाने की कोशिश की गई थी, और उसमें ये बात कही थी कि एक रिक्शे वाला बालक है जो अभी रिक्शा चलाता है, और उसके पिता ने उसके नाम पर बैंक में करोड़ों रुपया जमा करा रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं है, इसलिए वो दुखी है। अभी ये बात चल रही है कि अखबारों के माध्यम से यद्यपि उसे पता चल गया कि ये करोड़ों रुपया मेरे ही हैं, लेकिन उसके चित्त में ये संशय खड़ा हो गया कि मैंने तो आज तक बैंक में खाता ही नहीं खोला, तो ये रुपये मेरे कैसे हो सकते हैं, ये किसी दूसरे के होंगे। ऐसे ही शास्त्रों में पढ़कर इस आत्मा ने ये जाना कि मैं स्वयं भगवान हूं, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, और वो सोचने लगा कि भगवान बनने के लिए तो न मालूम कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहते हैं भगवान महावीर ने कितनी तपश्चर्या की थी, लोगों ने उनके कानों में कीले भी ठोक दिए थे, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया, मेरे कान में तो किसी ने मस्तिष्क की तीली तक नहीं डाली, मैं कैसे भगवान हो गया। जैसे वो रिक्शे वाला सोचता है ना कि मैंने तो बैंक में पैसा जमा कराया ही नहीं, तो मेरे वो कैसे हो सकते हैं, ख्याल में है ना, क्योंकि उसे पता नहीं है कि मेरा बाप जमा करा गया है। ऐसे ये सोचता है कि भगवान तो बने जाते हैं, और मैंने तो भगवान बनने के लिए कोई प्रयत्न किया ही नहीं, तो मैं भगवान कैसे हो सकता हूं, लेकिन क्योंकि उसे पता नहीं है कि स्वभाव से प्रत्येक आत्मा भगवान है। इसलिए एक सिद्धांत फलित हुआ कि होने से कुछ नहीं होता, जब तक ये विश्वास ना हो जाए उस बात का, तो होने का लाभ प्राप्त हो नहीं सकता। अब समझ लीजिए कि 7 दिन तक कोई आदमी बैंक में नहीं पहुंचा पैसे निकालने के लिए, तो बैंक वालों ने रेडियो स्टेशन से अनाउंसमेंट कराया, और हिंदुस्तान में रेडियो स्टेशन को आकाशवाणी कहते हैं, यानी कि आकाशवाणी हुई कि सुरेश बल्द रमेश के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, जो 10 करोड़ से भी अधिक ब्याज सहित हो गए हैं, वो 7 दिन के भीतर आकर के ले जाए, अन्यथा लावारिस समझकर सरकारी खजाने में जमा करा दिए जाए। और ये बात उसने भी सुनी रिक्शे पर बैठे बैठे अपने ट्रांजिस्टर पर। हमारे भारत देश ने और चाहे जो तरक्की की हो चाहे नहीं की हो, इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि रिक्शे वालों के पास भी ट्रांजिस्टर हो गए हैं, वो भी क्रिकेट की कृपा से। जब देश में क्रिकेट चलता है तो देश बंद हो जाता है, क्रिकेट चलता है, हर आदमी चपरासी से लेकर आईएएस ऑफिसर तक कान में ट्रांजिस्टर लगा करके और फिर कमेंट्री ही सुनता रहता है। उसने भी सुनी और उस पर आ रहा था कि सुरेश बल्द रमेश के 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है, जो ब्याज सहित 10 करोड़ हो गए हैं, 7 दिन के भीतर ले जाए। सुनकर वो खुश हो गया, सारे रिक्शे वालों को इकट्ठा किया और इनसे कहा, सुनो सुनो, देखो आकाशवाणी पर क्या आ रहा है, मेरा नाम आ रहा है। इस तरह उनका भी मनोरंजन किया, अपना भी मनोरंजन किया, लेकिन बैंक में पैसा लेने नहीं पहुंचा, क्योंकि अंदर में विश्वास नहीं आया, तो बात वहीं की वहीं रही।
जैसे वो बालक ट्रांजिस्टर पर अपनी भीड़ इकट्ठी करता है, अखबार लेकर के सबको इकट्ठा करके उन्हें बताता है कि मेरा नाम अखबार में छपा है, क्योंकि अखबार में नाम छपना भी तो अपनी एक बड़ी बात है, लेकिन अंदर से बड़कपन का विश्वास नहीं आता है तो काम होता नहीं है। ऐसे हम भी ये बड़े बड़े पोथन ना उठा लेते हैं समय सार गोमट सार, और सारे जगत के सामने कहते हैं कि देखो इनमें लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा है, इस तरह अपना मनोरंजन करते हैं और दूसरों का मनोरंजन करते हैं, और अंदर से श्रद्धा जागृत नहीं होती, विश्वास नहीं आता है, इसलिए बात वहीं की वहीं रहती है, पर्याय की पामरता समाप्त नहीं होती। पहले जब ज्ञान की चर्चा की थी तो कहा था कि जाने बिना कुछ नहीं होता, और शास्त्रों में उसके गीत भी कम नहीं गाए हैं कि ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। वो बात सच्ची भी है, लेकिन ये ज्ञान सामान्य जानकारी का नाम नहीं है, अखबार में पढ़कर उसे जानकारी हुई है, ज्ञान नहीं हुआ है, रेडियो पर सुनकर उसे जानकारी हुई है, ज्ञान नहीं हुआ है, शास्त्रों में पढ़कर हमने आत्मा परमात्मा की जानकारी की है, ज्ञान नहीं हुआ है, गुरु के मुख से सुनकर हमने आत्मा की जानकारियां तो बहुत की लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। क्या फर्क है जानकारी में और ज्ञान में? जानकारी हुई और ज्ञान नहीं हुआ, इसका क्या अर्थ है? अरे ज्ञान तो उसे कहते हैं जिसके साथ विश्वास हो, जिसके साथ श्रद्धा हो, वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, जिसके साथ प्रतीति हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, अकेले जानकारी से विश्वास नहीं होता, उसे कुछ और अलग चीज चाहिए, जिसे शास्त्र में आत्मानुभूति कहते हैं। जब ये विश्वास जागृत अंदर में हो जाएगा रिक्शे वाले को कि सचमुच करोड़ रुपया मेरे हैं तो उससे रिक्शा नहीं चलेगा, इस आत्मा को भी विश्वास हो जाएगा कि सचमुच मैं स्वयं भगवान हूं तो उससे भी कोई हल्का काम नहीं होगा। इसलिए जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान से भी अधिक सम्यक दर्शन के गीत गाए हैं, और यहां तक लिखा है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बेन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहसो दर्शन धारो भावे पवित्रा। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, इसके बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता, इसके बिना चारित्र सम्यक चारित्र नहीं होता, इसके बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। जब तक हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धान नहीं होगा, तब तक आत्मा के ध्यान का सवाल ही खड़ा नहीं होता, और आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और ध्यान नहीं होगा तो भगवान बनने की बात भी पूरी काल्पनिक ही है। तो क्या करें? आखिर उस रिक्शे वाले को ये विश्वास कैसे आए कि ये जो रोजाना सूचनाएं अखबार में आ रही हैं और टीवी पे आ रही हैं वो बात एकदम सत्य है, ख्याल में आए ना, और वे पैसे मेरे ही हैं। ये विश्वास जब तक उसे नहीं आएगा उसका काम नहीं होगा। ऐसे ही हम वक्ताओं के मुख से सुनकर के आत्मा भगवान है, शास्त्रों में पढ़कर के भगवान आत्मा है, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? आखिर हमें ये विश्वास कैसे आए कि ये बात 100% सत्य है और हमारी ही है? है कोई उपाय? जरा कल्पना करो कि यदि उस रिक्शे वाले को ये विश्वास नहीं हुआ तो सारी जिंदगी रिक्शा चलाएगा और करोड़ों रुपया सरकारी खजाने में चले जाएंगे, और आज तक तो ब्याज से 10 करोड़ हुए हैं और 10 साल में 100 करोड़ हो जाएंगे। वो रिक्शा चलाता रहेगा। तो कम से कम ऐसा उपाय तो हम करें कि जिससे वो लड़का करोड़पति हो जाए, उसे विश्वास हो जाए, और हम भगवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे बाद की बात है। और एक काम तो कम से कम मेरे हाथ में है, क्योंकि इस दृष्टांत को, इस कहानी को मैंने स्वयं गढ़ा है, और आप कहो तो मैं उस बच्चे को विश्वास दिला दूं जतीश भाई, जिससे वो करोड़पति बन जाए और उसका संकट तो दूर हो, अपना तो जब होगा तब होगा। अच्छा दिखा दूं तो सुनो, वो जो चाचा था जिसको मरते वक्त उसका पिता कह गया था कि मेरा बेटा जब 20 वर्ष का हो जाओ तो तुम उसे ये बात बता देना, 20 वर्ष के पहले नहीं बताना। उसे याद आई कि 20 वर्ष हो गए हैं, मुझे बताना चाहिए, तो वो उस बच्चे के पास पहुंचा। अब जरा ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि रिक्शे वाला करोड़पति बनने वाला है। और उसने जाकर उससे कहा, बेटा तू रिक्शा क्यों चलाता है? उसने कहा, चाचा जी रिक्शा नहीं चलाऊं तो क्या करूं, भूखों मर जाऊं, खाऊंगा क्या? कि नहीं नहीं, तेरे तो करोड़ों रुपया बैंक में जमा है। तो वो एकदम नाराज होकर बोला कि चाचा जी ये सारी दुनिया तो मेरी मजाक उड़ाती ही है, अखबार वालों ने ऐसा कर दिया है, टीवी वालों ने ऐसा कर दिया है, आकाशवाणी वालों ने ऐसा कर दिया है, ये रिक्शे वाले मुझे मजाक में करोड़पति रिक्शे वाला कहने लग गया। लेकिन आप तो मेरी पिता के उम्र के हो, कम से कम आपसे तो मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप भी मेरी मजाक उड़ाओगे कि मैं करोड़पति हूं। कि नहीं नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं उड़ाता हूं, सच कह रहा हूं कि तू करोड़पति है और वे करोड़ों रुपया तेरे ही हैं। कि मैंने तो बैंक में खाता ही नहीं खोला, मेरे कैसे हो सकते हैं? कि तुझे खाता खोलने की क्या जरूरत है, तेरा बाप खाता खोल गया था। कहीं ऐसा बात है क्या? बाप खाता खोल गया था कि हाँ? आपको पता था कि हाँ? आज तक आपने क्यों नहीं बताया था? जरा सा विश्वास अंदर आया तो रीढ़ की हड्डी में ताकत आ गई, अकड़ के बात कहने लग गया कि आपको पता था तो आपने क्यों नहीं बताया? उसका जवाब देना पड़ेगा कि छोड़ पुरानी बातें, अब आज तो बता दिया ना, पुरानी बात क्यों करता है? कि नहीं, हमारे करोड़ों रुपया बैंक में जमा रहे और हम रिक्शा चलाते रहे, भूखों मरते रहे, तुम्हें पता था, तुम्हें बताया नहीं, जवाब देना पड़ेगा। कि तेरा बाप मना कर गया था जब तक तू 25 वर्ष का ना हो जाए तब तक नहीं बताए। अच्छा, बाप मना कर गया था? कि हाँ, ऐसे बाप को मैं बाप नहीं मानता। अब सच्चा करोड़पति बन गया है। जो अपने बाप को बाप माने वो कैसा करोड़पति? देखो, मैंने बंबई में सैकड़ों करोड़पतियों के घर में चांदी की थालियों में खाना खाया है भाई साहब, लेकिन वो करोड़पति चाहे मारवाड़ी हो चाहे काठियावाड़ी, सबकी एक ही कहानी है जो लोग मुझे सुनाया करते हैं। आप कहो तो आपको सुना दूं, 2 मिनट की है। हर एक कहते, जब हम अपने देश से आए थे तो लोटा डोर लेके आए थे, बाप ने पूरे टिकट के पैसा भी नहीं दिए थे, देता भी कहां थे, 6 रुपया महीना की नौकरी करता था, खाने के तो लाले थे। और पंडित जी आपकी कृपा से जो ठाट बाट दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब इस बंदे का ही कमाल है। बस सबकी एक ही ये कहानी है। बंबई में कोई आदमी पैसा लेके नहीं आया। सबसे बड़ी बात तो है कि बंबई में कोई बंबई वाला है ही नहीं, अमेरिका में अमेरिका वाला नहीं है, बंबई में बंबई वाला नहीं है। क्यों? मैं उनसे कहता हूं, भाई साहब आपको अपनी जितनी प्रशंसा करनी हो कर लो, सगे बाप को गाली क्यों देते हो? तब वो कहते, गाली कहां दी? मैंने कहा, तुम उसे भिखारी बता रहे हो कि कुछ नहीं था उसके पास? यदि गरीबी गाली नहीं है तो करोड़पति होना प्रशंसा की बात भी नहीं है, यदि करोड़पति होना प्रशंसा की बात है तो गरीबी गाली भी है। लेकिन वे क्या करें, वे कहने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो बात कैसे बताएं कि ये जो करोड़ों की संपत्ति आप मेरे पास आज देख रहे हो, ये बाप कमाई नहीं है, ये आप कमाई है, ये बताने के लिए बाप को कंगाल बताना जरूरी है। ये क्या है, ये जोड़ा है सब हमने तिगनमल जी, ये क्या है परिग्रह? भगवान महावीर के अनुसार इसका क्या नाम है? पाप। पांच पापों में है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो ये जो सारा पाप जोड़ा है उसका जिम्मेवार मैं ही हूं, और इसकी सजा में नरक में मैं ही जाऊंगा, बाप नहीं जाएगा, ये बता रहे हैं वो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमें अपनी महिमा ख्याल में नहीं आएगी, उसको करोड़पति का होते ही ये ध्यान आते ही रीढ़ में हड्डी में ताकत आ गई ना, और वो कहने लग गया, जवाब दे, पूछने लग गया कि तुमने आज तक क्यों नहीं बताया, रीढ़ की हड्डी में ताकत आ गई। वो नीचे को देखता ही नहीं है, नीचे को देखे तो समझ लेना करोड़पति नहीं है। तो उसने कहा, भैया तेरा बाप मना करेगा तो मैं ऐसे बाप को बाप नहीं मानता। क्यों, कैसे मानेगा? ऐसे ही किसी ज्ञानी धर्मात्मा ने हमारे माथे पर हाथ फेर के आके कहा कि भाई तुम तो तीन लोक के नाथ स्वयं भगवान हो, तुम भोगों के भिखारी क्यों बने हो, ये दर दर में संसार में क्यों भटक रहे हो? तो हमने कहा, भैया माफ करो, हमारा दिमाग क्यों खराब करते हो? हमसे और चाहे जो कुछ कहना, लेकिन भगवान मत कहना। क्यों भैया, क्या हो गया? क्योंकि भगवानों के दिन जरा आजकल अच्छे नहीं चल रहे। क्या हुआ? इस देश में जो आदमी बन के रहता है उसकी बड़ी इज्जत होती है आज, और जरा आगे बढ़ा और भगवान बनने की कोशिश की और गया काम से। आचार्य रजनीश थे ना, रजनीश ये तो प्रोफेसर थे जबलपुर विश्वविद्यालय में, और प्रोफेसर को हिंदी में बोलते हैं आचार्य। तो इनने हिंदी के प्रेम की वजह से लिखना शुरू कर दिया, आचार्य श्री रजनीश। तो लोगों ने समझ लिया भी आचार्य शंकराचार्य जैसे, कुंदकुंदाचार्य जैसे, हेमचंद्राचार्य जैसे, उन्हें आचार्य समझ लिया, उन्हें आचार्यों जैसा सम्मान देने लग गए। उन्होंने कहा, जनता इतनी मूर्ख है, मैं तो पता ही नहीं था, मैं तो प्रोफेसर वाला आचार्य था, और इनने असली आचार्य मान लिया मेरे को, धर्मगुरु मान लिया। तो उन्होंने कहा, भगवान बन जाओ ना। तो फटाफट आचार्य शब्द हटाकर लिखवा दी, लिख दिया भगवान श्री रजनी। आचरण वैसा ही, खान पान वैसा ही, उठना बैठना वैसा ही, कोई चेंज नहीं, और नाम चेंज हो गया क्या? भगवान श्री रजनीश। आखिरकार बंबई छोड़ के भागना पड़ा, पूना गए, पूना छोड़ के भी भागना पड़ा, अमेरिका पहुंच गए, और एक दिन अमेरिका को भी छोड़ना पड़ा। और ये हालत थी कि दुनिया का कोई देश उन्हें अपनी जमीन पर पैर रखने देने के लिए तैयार नहीं था। क्या हुआ फिर? होना क्या था? जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर खो आए। हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां सब समाते हैं, आगे लौट के हैं। लेकिन वे भगवान श्री रजनीश से ओशो रजनीश बन गए। जापानी अपने भगवान को ओशो कहते हैं, और पैसा भी उनके पास खूब डट के है, इसलिए उन्होंने कहा ओशो बन जाओ, भगवान नहीं बनेंगे। तो भैया भगवानों के दिन जरा अच्छे नहीं चल रहे हैं। भगवान बनता है तो फिर जनता उसे स्वीकार नहीं करती है। तो तुम मुझको और चाहे जो कुछ कहो, लेकिन भगवान मत कहना। कि भाई उनकी बात में और हमारी बात में फर्क है, महावीर कहते हैं। कि क्या फर्क है? वो तो ये कहते हैं कि मैं भगवान हूं, और हम तो ये कह रहे हैं कि तुम भगवान हो, सभी आत्मा भगवान है। वो तो अपने से पर्याय से भगवान मानते थे, और हम जो बात कर रहे हैं वो तो स्वभाव वाले भगवान की बात है कि सभी भगवात्मा भगवान स्वभावी हैं, यानी भगवान बन सकते हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। क्यों? इसलिए दिमाग में से निकाल दो कि मैं भगवान मत कहो। जब वो कहता है कि भगवान बनने के लिए तो कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ती है, हमने तो कुछ नहीं किया, कहते हैं 6-6 महीने के उपवास करना पड़ते हैं, हमने तो एक दिन रोटी नहीं छोड़ी, हम कैसे भगवान बन गए? कि भाई साहब, ये भगवान बनने की बात नहीं है, अभी तो तुम भगवान हो उसकी बात है, ये तो स्वभाव की बात है, जब बनने की बात आएगी तब दूसरी बात होगी। कि अच्छा ऐसा बात है? कि हाँ, कि तुम स्वयं भगवान हो? उसने माथे पे हाथ फेर के कहा, ये बात सच्ची है? कि हाँ, तो आज तक क्यों नहीं बताई? जैसे वो रिक्शे वाला कहता था ना, तुमने आज तक क्यों नहीं बताया कि मेरे 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है? ये भी अटकने लग गया। कि जाने देना, आज तो बता दी कि नहीं, हम भगवान थे, 3 लोग के नाथ थे, लोगों के भिखारी बने रहे, गली गली भीख मांगते रहे, और तुम्हें पता था और तुमने आज तक बताई नहीं। वो रिक्शे वाला भी कहता है, तुम्हें पता था और हम परेशान होते रहे और तुमने बताई तक नहीं। जवाब देना पड़ेगा इसका, क्यों नहीं बताया? कहा भैया, समय के पहले और भाग्य से अधिक न आज तक किसी को कुछ मिला है और न कभी मिलेगा। यदि पहले बता भी देते तो उस रिक्शे वाले को भी कोई लाभ होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि 20 वर्ष पहले वे पैसा बैंक से तो निकलते नहीं, फिक्स डिपॉजिट थी ना, और रिक्शा चलता नहीं, भूखों मर जाता। इसलिए समय के पहले पता चलने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? अब समय पे पता चल ही गया है तो अब काम हो ही सकता है। इसलिए कल तक किसी ने क्यों नहीं बताया, इस झगड़े में मत पड़ो। आज तक किसी ने हमें क्यों नहीं बताया कि हम भगवान हैं? तुमने क्यों नहीं बताया कि अब बता रहे हैं ना, कि आज तक क्यों नहीं बताया कि समय के पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है? समय के पहले बता देते तो तुम मानते ही नहीं। आज हम बता रहे हैं, बोलो कितने लोग मान लेंगे? कहेंगे बड़ा अच्छा आ गया, भगवान आ गया, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। पहले हम इंसान तो बन जाए फिर भगवान की बात करना। अरे भाई, हम तो आपको इंसान समझ के ही बात कर रहे हैं, आप इंसान नहीं हो, क्या बात कर रहे हैं? जब तक समय नहीं आएगा तो भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। कोई से कितने भी सुने, तीर्थंकरों के मुख से भी हमने ये बात सुनी, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं हुआ। समय के पहले नहीं होता है। अभी भी जो आदमी यहां बैठे हैं वे सभी विश्वास कर लेंगे ये बात नहीं है, लेकिन जिसकी काल लब्धि आ गई होगी, जिसका समय आ गया होगा, उसको ही ये विश्वास होगा और उसका ही काम होगा। इसलिए तुम्हारी बात छोड़ो, आज तक क्यों नहीं बताई। बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े व्याख्यान दिए और ये कहा, हमारी संस्था को चंदा दो तो चारों दानों का लाभ तुम्हें मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी संस्था में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो ज्ञान दान हो गया, सरकारी पढ़ाई पढ़ते हैं, बीमार होते हैं इलाज कराते हैं तो औषध दान हो गया, उन्हें एक बाहुबली व्यायामशाला खोल रखी है तो अभय दान हो गया। क्यों? और भोजन तो वो करते ही हैं तो आहार दान हो गया, तुम दान दो सारों दानों का। ऐसा करके पैसा ऐंठने वाले पंडित तो बहुत आए, महाराजों ने भी यही बताया, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुम स्वयं भगवान हो। अपना स्वार्थ सादा है, हमें उल्लू बनाया, अपना भगत बनाया, लेकिन भगवान बनने की बात नहीं कही कि जाने दो पुरानी बात। आज तो हम कह रहे हैं क्या, जरा जरा अंदर में विश्वास जागृत हो जाए, जब उसने कहा कि ये सच्ची बात है तो उसे अंदर से विश्वास जागृत हुआ, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो उससे रिक्शा चलेगा? नहीं चलेगा। उसे मालूम पड़ गया कि 1 करोड़ रुपया मेरे हैं, बैंक में जमा है, तो रिक्शा नहीं चलेगा। ऐसे ही जिस आदमी को ये पता चल जाए कि मैं स्वयं भगवान हूं, तो उससे उसके जीवन में कोई हल्का काम नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा, समझे ना, हिंसक आचरण नहीं होगा। इसलिए भाई, ये बात हमारे जीवन में शुद्ध सदाचार को लाने वाली बात भी है, लेकिन ये सदाचार हमारे जीवन में कैसे आएगा और हम पर्याय में भगवान कैसे बनेंगे, इस बात की चर्चा अब कल के व्याख्यान में होगी। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।